निर्विशेषाय शून्यवादे पाश्चात्य देशकारिणे गुरवे गौरचन्द्राय राधिका तदाल्ये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापिकाचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की कृपा से श्रील प्रभुपाद अध्यात्मिक केंद्र सूरत में प्रातः श्रीमद भागवत के सत्संग में आपका स्वागत है। श्रीमद भागवत महापुराण के पहले स्कंद के चौथे अध्याय में भगवान के दो अवतारों का संवाद है। भगवान का एक ज्ञान वेदों के ज्ञान के विस्तार करने वाले व्यासदेव और दूसरे भगवान के मन से प्रकट हुए भक्ति के आचार्य नारद के बीच में संवाद है। तो ये सामान्य व्यक्तियों के बीच की बातचीत नहीं है, ये भगवान के दो विशिष्ट अवतारों के संवाद की बात है। और दोनों का उद्देश्य, भगवान का उद्देश्य है भक्तानाम अभयंकर, भक्तों को भय से मुक्त करना है और प्राणी मात्र का कल्याण ही भगवान का मुख्य उद्देश्य है। तो इन नारद व्यास संवाद का वर्णन आगे चल रहा है। इस अध्याय का नाम है नारद का प्रकट होना। और नारद कहाँ प्रकट होते हैं? व्यासदेव के आश्रम में। और व्यासदेव का आश्रम कहाँ है? बद्री का आश्रम में। और सातवें इसी स्कंद के सातवें अध्याय के दूसरे श्लोक में व्यासदेव के आश्रम का वर्णन है कि व्यासदेव का आश्रम कहाँ है। सरस्वती नदी के पश्चिम तट के ऊपर संप्रश्य नाम का व्यासदेव का आश्रम है। तो उस आश्रम में व्यासदेव कुछ चिंतन कर रहे हैं। किस बात का चिंतन कर रहे हैं? कि कलियुग आने वाला है, उसके अंदर बहुत बड़े वर्ण आश्रम धर्म के मर्यादाओं में बाधाएं पड़ेंगी, उल्लंघन, बहुत से लोग उल्लंघन करेंगे अपने धर्म का और संकट वाले वातावरण से लोगों को बचाने के लिए वो कुछ चिंतन कर रहे हैं। तो कल हमने 16वें श्लोक तक पढ़ा था या 15वां श्लोक पढ़ लिया था, 16वां पढ़ेंगे आज। कौन सा है ये, ये लिखा हुआ कौन सा, यहां कौन सा है? कल 15 तो हमने पढ़ा था, फिर भी पढ़ लीजिए एक बार, फिर पाठ कर। सकदाचित सरसत्व्या उपसृश्य जलम शुचि विवेक्त एक आसीना उदिते रविमंडले। उस व्यास देव ने, कदाचित एक समय की बात है, सरस्वती अपने आश्रम में, सरस्वती के पश्चिम तट पे जो उनका आश्रम है, उपस्पर्श जलम शुचि, और सरस्वती के जल से अपने आप को पवित्र किया, इसका अर्थ है आचमन किया अथवा स्नान करके आचमन करके क्या किया, फिर विविक्त एक स्थाने एकाग्रचित से एक जगह आसन लगा के बैठे। वैसे विविक्त का एक अर्थ होता है अकेलाई में बैठना, और दूसरा विविक्त अर्थ है कि मन को सब जगहों से हटाना। जैसे कभी एक अकेलाई बैठने को एक मौन, जैसे मौन होता है, तो मौन का ये अर्थ नहीं है कि बोलना नहीं जबान से। मौन मन की तपस्या है, भगवत गीता में मन कहीं बाहर नहीं जाए, इसलिए मौन बहुत मुश्किल है। मन जो है शरीर की तपस्या नहीं है भगवत गीता में, मन मौन जो है मन की तपस्या है। विवेक्त का मतलब है मन को एकाग्र करना और एक आसन के ऊपर बैठना। ये आसन की भी आसीना बैठना, आसन अपने के ऊपर बैठना, एक ही स्थान पे बैठना, ये अपने आप को स्थान में बांधना है। कुछ समय हमको एक जगह पे बैठना है, इसी आसन पे बैठना है, यहीं बैठ के जप करना है, तो ये स्थान में बांधना ये बहुत जरूरी है। और फिर समय कौन सा है, तब कहते हैं उदिते रवि मंडले, सूर्य उदय से पहले। रवि मंडल, अभी तक सूर्य उगा नहीं है, उदिते उगने वाला है, इसका मतलब ब्रह्म मुहूर्त के समय में व्यासदेव ऐसे एकाग्रचित होकर सरस्वती से पवित्र होके और एक दिन ऐसे बैठ गए। क्यों बैठ गए, किसके लिए बैठ गए? 16वां श्लोक है, 16 श्लोक कह रहे परावरग्नः स ऋषिः काले न व्यक्तरंगसा योग धर्म व्यक्ति कर्मा प्राप्तं भुवि युगे युगे। कैसा ऋषि था ये वेदव्यास का, यहां कहते पर अवर्ज्ञ, पर और अवर को जानने वाला, पर और अवर को जानने वाला। वह श्रील प्रभुपाद ने अर्थ लिखा है कि जो भूत और भविष्य को जानने वाला हो, भूत और भविष्य को जानने वाला, पर अवर, जो गुजर गया है और जो आने वाला है, उन दोनों को जो जानने वाला है। इसका मतलब इससे पहले जो युग बीत गया उसमें क्या था और आने वाले युग में क्या हो, उसका ज्ञ। पर अवर का ज्ञ मतलब भूत और भविष्य को जानने वाला। जो बुद्धि भूत को याद रखती है उसको स्मृति कहते हैं, जो गुजरे हुए समय की बात याद रहे उसको स्मृति कहते हैं, जो भविष्य के बारे में पक्का विचार कर ले उसको मति कहते हैं कि आगे चल के हमको क्या करना है, बुद्धि का दूसरा नाम है मति। और जो वर्तमान में किसी अच्छे काम में लगे उसको बुद्धि कहते हैं। लेकिन जो तीन काल का पता लगे, भूत भविष्य का, उसको प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा, प्रज्ञा बुद्धि का वो स्तर है जिसमें वर अवर दोनों का पता लगे। तो ये ऋषि भूत भविष्य को जानने वाले थे, वर्तमान तो सबके सामने होता है लेकिन भूत भविष्य को जानने वाले थे। तो क्या क्या जब भूत भविष्य, इसका क्यों अर्थ लिखा है पर और अवर का दूसरा भी अर्थ हो सकता है। पर का मतलब पराया है, जो चला गया, जो चला गया वो तो अभी पराया हो गया, उसको क्या करेंगे, और अवर का मतलब अभी आया ही नहीं है, उसको वर्ण करें जब सामने हो तब ना, जो गुजर गया और जो आने वाला है। तो ये कौन क्या हो सकता है, तो पास्ट प्रेजेंट प्रभुपाद जी ने क्यों उनका पास्ट और फ्यूचर, क्योंकि नीचे लिखा है काले, तो ये काल की बात है, पर और अवर यहां काल है। इस कर्म भी जो है, कर्म भी ऐसे होते हैं, अवरेण कर्म, अर्जुन तो इस कर्म को मत करो जो बंधन में डालने वाला है। तो यहां काले न आने से ये समय का हो गया। काले न अव्यक्त रमसा, अव्यक्त काल के अव्यक्त मतलब जो देखने में नहीं आए, रमसा का मतलब काल का शक्ति, अदृश्य काल की शक्ति के कारण भूत भविष्य को जानने वाले ने काल की अव्यक्त शक्ति, काल दिखता नहीं है लेकिन काल की जो, काल का जो बल है, अदृश्य काल के बल का उन्होंने अनुभव किया। तो काल ने क्या प्रभाव डाला, युग धर्म व्यक्ति कर्म, युग के धर्म में व्यतिकर्म मतलब विकृत हो गया है, उल्टा चल रहा है, युग में कर्मों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। कर्म जब होगा तो किसका कर्म होगा, तो जीते जी आदमी का कर्म होगा ना, तो काल में भी परिवर्तन है और उस काल में रहने वाले जो जीव हैं उनके अंदर भी विकार आया है। तो दो चीजों का हो गया, काल का भी और काल में रहने वाले जीवों का भी। प्राप्तम भुवि युगे युगे, भुवि का मतलब इस पृथ्वी के ऊपर, ये समय समय के ऊपर काल अपना ऐसा अदृश्य प्रभाव डालता है और समय में धरती के ऊपर, दोनों समझ लीजिए कि जीव में और प्रकृति में व्यक्ति कर्म होता है, व्यक्ति कर्म मतलब उल्टा कर्म होने लगता है, कुछ बातें नॉर्मल जैसी नहीं होती है, स्वाभाविक नहीं होती है, अस्वाभाविक हो जाता है। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ, पर अवर्ग्य स ऋषि, वो ऋषि व्यास देव जो भूत और भविष्य को जानते थे, उन्होंने काल के अदृश्य प्रभाव को युग धर्म के परिवर्तन में, युग धर्म में जो परिवर्तन आया उसको देखा, और जो लोग उस समय रहेंगे इस धरती के ऊपर उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका उनको दर्शन हुआ अथवा उन्होंने उस चीज को देखा। तो यहां देखा, इसका अर्थ देख लिया, ये इसका ट्रांसलेशन है या? हाँ, तो क्या क्या लिखा है, पढ़िए जरा ट्रांसलेशन।
महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा,
युग के कर्तव्यों में, तो इसमें कर्तव्य किसके हो गए, जो युग में जीने वाले आदमी हैं उनके, और युग में जो जैसे पृथ्वी है, गाय है, क्योंकि प्रभुपाद का तात्पर्य है कि पृथ्वी उतना अनाज नहीं देता है जितना पहला दे रही थी, गाय उतना दूध नहीं देगी जितना पहला दे रही थी। तो केवल जीवों में नहीं और जड़ चीजों में भी परिवर्तन देखा। हाँ हाँ,
कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है।
तो ये समय समय के ऊपर युग युग में इस तरीके से व्यक्तियों के धर्म में भी और प्रकृति के धर्म में भी कुछ उल्टा सीधा होता रहता है काल के प्रभाव से। काल बड़ा बलवान है। श्री प्रभुपाद कहते कैसे देखा व्यासदेव ने, क्योंकि व्यासदेव मुक्त आत्मा है, लिखा ऐसे है, व्यासदेव लिबरेटेड सोल है, ब्रह्मभूत है, एक जीव भूत होता है जो जीव को शरीर धारण करना पड़ता है अपने कर्मों के कारण, एक ब्रह्मभूत होता है जो शरीर धारण करता है लेकिन भगवान की इच्छा से। तो व्यासदेव मुक्त जीव है, शक्ति अवेश अवतार है, भगवान ने उसमें अपने शक्तियों का संचार किया है जिसके द्वारा वो कुछ ऐसे अद्भुत कार्य करेंगे, इसलिए व्यासदेव को कहते हैं भगवान के शास्त्र वितरण का अवतार। तो व्यासदेव ऐसे मुक्त जीव है, उसको भूत भविष्य वर्तमान का पता लगता है, इसलिए उन्होंने भविष्य में होने वाले कलयुग में जो अनुचित चीजें होने वाली हैं उनका दर्शन किया कि सामान्य लोग कैसे कलयुग में दुखी हो जाएंगे, क्योंकि अज्ञान का अज्ञानता के अंधकार से भरा हुआ ये कलयुग है। अज्ञानता का अंधकार क्यों है कलयुग में, क्योंकि लोग ज्ञान प्राप्त करने के रास्ते में चलना ही नहीं चाहते, लोगों की रुचि ही नहीं है, तो इसलिए प्रभुपाद ने लिखा है कि इस युग के लोग ज्यादा उनका कोई इतनी रुचि नहीं है असल में अपने हित के लिए, केवल भौतिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं, जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति उनका चिंतन न के बराबर है। ये कलयुग के लोगों की पहचान है कि भौतिकता के लिए भागा दौड़ी करते हैं और आध्यात्मिकता के प्रति उनके पास समय है नहीं, अथवा उधर ध्यान ही नहीं जाता है। तो अब ये जो श्लोक, इसके बाद के दो श्लोक हैं, इसमें काल के अदृश्य काल के प्रभाव से प्रकृति में और जीवों में क्या विकार देखे, क्या देखा, प्रकृति में क्या विकार आया, जीवों में क्या विकार आया, तो वो इन दो श्लोकों में वर्णन है। अब प्रकृति के विकार पहले हैं, भौतिकानां च भावानां शक्ति हरासं च तत्कृतम् अशर्धान अर्शधर अशर्धधानान्य सत्वान् दुर्मेधां हृषितायुः आयुषः दुर्भागांश्च जनान् वीक्षये मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां या दद्यहो हितममोघदृक्। अब ये दो श्लोक जो प्रकृति में काल के कारण दोष आएंगे उनको देखा, और मानवों में उसके कारण जो दोष आएगा वर्णाश्रम के व्यवस्था में जो दोष आएगा उसको देखा। भौतिकता नाम च भावा नाम शक्ति हरसाम च तत्कृतम्। पहला किसके ऊपर, भौतिकता नाम, भौतिकता नाम जो भी चीज है प्रकृति से बनी हुई है, भौतिक चीजों के अंदर उसमें क्या चीज होगा, उस प्रकृति के कार्य में क्या की भावना, मतलब जो वो काम करती है उसमें क्या आएगा, शक्ति ह्रासम च, उसकी शक्ति कम हो जाएगी। किस चीज की शक्ति कम आ जाएगी, आपको भावार्थ मिलेगा कि उतना ही धरती के अंदर प्रयास करेंगे लेकिन उतना अन्न पैदा नहीं होगा जितना पहले करते थे, गाय उतना दूध नहीं देगी और नदियों के अंदर उतना पानी नहीं बहेगा जितना पहले बह रहे थे। किसी जमाने में कहता है भाई गंगा जमुना ऐसे लहरों से बहती थी, अब ऐसे है कि गंगा जमुना लकीर की तरह दिखती है, कहीं पानी भी नहीं उसमें दिखता है। तो ये प्रकृति के कारण, प्रकृति के सारे चीजों के अंदर शक्ति का ह्रास हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगी। और क्या होगा, और जो उस समय में लोग रहेंगे उनके अंदर क्या कमी आएगी, पहले अश्रद्धाना अश्रद्धानान, उनके अंदर श्रद्धा होगी नहीं। श्रद्धा किसको कहते हैं, विश्वास को, किसके ऊपर विश्वास, यहां श्रद्धा जो लिखी है शास्त्र के ऊपर विश्वास, भगवान के वचनों के ऊपर विश्वास, साधुओं के ऊपर विश्वास, ये तीन चीजें कम होती जाएंगी। न भगवान के ऊपर विश्वास होगा, न भगवान की वाणी के ऊपर विश्वास होगा, और न भगवान के भक्तों के ऊपर विश्वास होगा। ये हो गया अश्रद्धान। और ये ऐसे कौन लोग होंगे, तो कहते हैं निःसत्वान, जो सत्वगुण में नहीं होंगे वो ऐसे होंगे। निःसत्वान, सत्वान का मतलब जो सत्वगुण प्रधान है वो तो ज्ञान के लिए जाएंगे तो ज्ञान कहां मिलेगा? जो साधु होंगे उनके पास मिलेगा। ज्ञान कहां मिलेगा? शास्त्र में मिलेगा। तो सतोगुण से रहित, तो प्रायः कलयुग में लोग तमो और रजोगुण के प्रभाव से प्रभावित होते हैं, सतोगुण कम होता जाता है। ये प्रभुपाद जी का पहला अमेरिका का अनुभव है कि ये सारे लोग लोभ लालच में पागलों की तरह भाग रहे हैं, रजोगुणी और आलसी तमोगुण में नशा करके पड़े हुए हैं। मैं इस्कान की स्थापना लोगों को सतोगुण में लाने के लिए करता हूं। प्रभुपाद जी का पहला अमेरिका का ऑब्जर्वेशन है कि रजो और तमोगुण की प्रभाव से प्रभावित ये सब लोग हैं। तो यहां उनकी श्रद्धा नहीं होगी और वो सतोगुण से रहित होगा, रजो और तमोगुण का उनके ऊपर बहुत प्रभाव होगा। और प्रायः संसार के अंदर देखेंगे रजो और तमोगुण से ज्यादा लोग अभिभूत हैं और बहुत कम लोग हैं जो सतोगुण की तरफ उनकी रुचि है। अब जो सतोगुण में नहीं होगा उसकी क्या पहचान है? बोला दुर्मेधा, उनकी बुद्धि बहुत नहीं के बराबर होगी। दुर्मेधा डल, वैसे क्या दुर्मेधा, दुर मेधा, मेधा कहते हैं बुद्धि को, मेधा बुद्धि को, और दुर इसको कहा जाए कि बुद्धि बहुत उससे दूर होगी, मतलब बिना बुद्धि वाला होगा। दुर मेधा दूर होगी, जिससे बुद्धि उसके पास ही नहीं आएगी, वो बुद्धि रहित, बुद्धि रहित जो होंगे, क्योंकि श्रद्धा नहीं होगी तो बुद्धि कहां से आएगी? बस वैसे श्रद्धा होती है तो शास्त्र पढ़ता है तो बुद्धि आती है। वैसे बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम क्या है? डिस्क्रिमिनेशन। बुद्धि का काम है विश्लेषण करना, क्या क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह बुद्धि का काम है। तो जहां बुद्धि नहीं होगी, दुर्बुद्धि होगी, वो ये नहीं निर्णय कर पाएगा कि क्या करना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये शास्त्र बताता है। या फिर एक कई बार आपसे एक प्रश्न पूछा था और आपको याद भी होना चाहिए, दो प्रकार के सृष्टि के अंदर लोग होते हैं, एक असुरी प्रवृत्ति के होते हैं, एक देवी प्रकृति के होते हैं। जो देवी प्रकृति के होते हैं उनको शास्त्र के ऊपर श्रद्धा भी होती है, भगवान के वचनों के ऊपर श्रद्धा भी होती है, साधुओं के ऊपर श्रद्धा भी होती है। और जो लोग असुरी प्रवृत्ति के हैं उनको भगवान, भगवान के वचनों और भक्तों के ऊपर श्रद्धा नहीं होती है, लेकिन जानकारी होती है, देवी देवता की पूजा भी करते हैं लेकिन भगवान के द्वेषी होते हैं। तो इन दोनों में कौन सी कसौटी है जिससे कहें कि यह देवी प्रकृति का है और यह असुरी प्रकृति का है? कौन सी कसौटी है? कौन से आधार पे किसी को कहें कि यह असुर असुरी स्वभाव वाला है और यह देवी स्वभाव वाला है? किसी सिंह थोड़ी होगा असुर है उसको, ऐसे तो ऐसे कैसे पता लगे? वो कसौटी क्या है? वो नापदंड क्या है? किसके आधार पे किसी को असुरी प्रवृत्ति का कहे या देवी प्रकृति का कहे? बोलिए, हमने आपको सुनाया है पहले, मुझे याद है पक्का। सोलवे अध्याय में शास्त्र विधिम उत्सर्जया यजन्ते काम कारत न सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र है वो निर्णय करता है कि कौन देवी प्रकृति का है कौन असुरी प्रकृति का है, और इनको श्रद्धा ही नहीं है। तो ये तो बेचारे श्रद्धा रहित हैं। क्यों श्रद्धा रहित हैं? क्योंकि असुरी प्रभाव इनके ऊपर ज्यादा है, शास्त्रों से बहुत दूर रहते हैं। अब पुस्तक वितरण करने जाते हैं कोई लेने के लिए, 50-10-20 के बाद एक कोई होता है, वो भी मरते मरते लेता है। इससे पता लगता है कि लोग कितने असुरी प्रवृत्ति के हैं। अगर साधु प्रवृत्ति का होता ढूंढ ढूंढ के बोलेगा कहां मिलेगी भगवद गीता। और जैसे कोई कभी नई चीज मार्केट में आता है लाइन में लगते हैं लोग, ऐसे गीता लाइन में लग के जब लेने लगे तब समझ लो कि सतोगुण आ गए। जब लोग इस तरीके से भगवद गीता को लेने के लिए उत्साहित हों और आप कहो कि एक्स्ट्रा नहीं है, स्टॉक नहीं है, और कहेंगे बुक करो मेरे को कब दोगे, तब समझ लो कि सतोगुण आया। असल में ये सत्वगुण की परिभाषा के लोग को शास्त्र की प्रति रुचि होना है, और ऐसी स्थिति हो नहीं रही। अब यहां भागवत रखिए, पहला स्कंदाज कौन सतो गुण वाला है पता लगेगा। जिसके पास नहीं है वो अभी लेके आएगा और साइन करके ले जाएगा। क्या बारहवा स्कंद में तो कलयुग का वर्ण है, बारह बुक है सिर्फ। मैंने देखा है, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कोई अपनी तरफ से कह रहा हूं, मैं कल से देखा है किताब अभी तक गए नहीं है। तो मैं देखा है कि अभी तक सतोगुण का प्रभाव आया नहीं है, सतयुग यहां भी ऊपर नहीं पहुंचा। कल तो शाम को कलयुग आया, लिफ्ट भी बंद हो गई। वैसे पूरा सेठ भागवत तो खैर 18 वॉल्यूम में बहुत विस्तार से प्रभुपाद का एक आविष्कार है, विश्व कल्याण के लिए, विश्व मंगल के लिए। हर एक के घर में भगवान का ये स्वरूप भागवत वांग्मय होना चाहिए। भगवान के मंदिर में तो जाएंगे, जब पट खुलेंगे तब दर्शन होंगे, लेकिन भागवत को तो आप जब चाहें तब उठा के दर्शन करते हैं। और ये भागवत विशेष रूप से वो भागवत का भाव है, ये भागवत शास्त्र भी है, ये भागवत पुरुष इसके अंदर प्रभुपाद के तात्पर्य है। तो ये तो डबल एक्शन है कि भगवान की वाणी के साथ साथ प्रभुपाद का उसके ऊपर भावार्थ है। और पहला स्कंद भी अकेला उपलब्ध है जिसके ऊपर अभी कथा कर रहे हैं। और ये कथा मेरे ख्याल में नहीं तो भी और आगे 6 महीने तो चलेगा, तब ये स्कंद पूरा होगा। संभव है कि 6 महीने से ज्यादा चले। तो जितने पुस्तक है ये आज शाम को नहीं, आज क्लास खत्म होते ही खत्म होने चाहिए, तो लगेगा कि सतोगुण आने की संभावना है। हरे कृष्णा। हाँ जी, क्या ऐसा मैं काम नहीं करता हूं। किसी को एक्सपोज करना मेरे को अच्छा नहीं लगता है कभी। किसी के पास नहीं है क्या? सबको मालूम नहीं है कि मेरे पास नहीं है? काहे के लिए? तो अंदर में ये गुण सब अंदर काम करते हैं, बाहर से मैंने कहा सींग विंग नहीं होते हैं असुरों के, बाहर से कुछ पता नहीं लगता है। किसके पास है नहीं है वो आप जानो, लेकिन जो लेंगे इसका मतलब सतो गुण के, जिनके पास है वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन आज ये खत्म होने चाहिए। हरे कृष्ण। तो अश्रद्धाना निस्सत्वम सतो, दुर्मेधा बुद्धि नहीं होगी, और जिसकी बुद्धि नहीं होगी तो काम क्या करेगा? बुद्धि का काम क्या बताया? डिस्क्रिमिनेशन को क्या कहेंगे हिंदी में? विश्लेषण करके, विवेक। विवेक नहीं होगा, और विवेक नहीं होगा तो क्या काम करेगा? अपने हानि पहुंचाने वाला काम करेगा, नशा करेगा, न खाने वाला खाना खाएगा, न करने वाला काम करेगा, और उसका परिणाम क्या होगा? हृषित आयु, अपने आयु को नाश करेगा। ऐसा ही श्लोक पहले अध्याय में है कि अल्प आयुष है कलयुग में। वहां श्री प्रभुपाद ने कहा ऐसा नहीं है कि सबकी उम्र 100 साल होनी चाहिए, लेकिन 100 साल कोई नहीं जीता है, क्योंकि उनके खान पान में और उनके रहन सहन में इतना दुष्व्यवहार वाला वातावरण हो गया है कि वो अपनी आयु को खुद अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बोल देख लो, नशा करने वालों बीमार होगा कि नहीं? आज नहीं तो कल होगा। ये तो हुआ एक व्यक्ति अपनी मूर्खता से, और सबकी मूर्खता के कारण खान पान के लिए जो चीजें मिलती हैं वो भी पौष्टिक नहीं है, वो भी किसी काम की नहीं है। आटा बाजार से लेके आते हैं, उसमें से मैदा निकाल दिया, सूजी निकाल दी, बाकी भूसा ही दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं आटे में? कुछ है क्या कुछ आटे में? उसमें अपने गेहूं का पिसवा के खाना तो लोगों को भूल गया, पीस के खाना तो कब का भूल गया, पिसवा के खाना भी भूल गया। तो ऐसे गाय रखना तो खत्म हो गया, तो अब दूध कौन सा खा रहे हैं कुछ मालूम नहीं है, ये तो व्हाइट पाउडर है, क्या है पता नहीं। गाय घी कितने किलो गाय का मिलना चाहिए आपके विचार में? 1000 रुपया। बाजार में क्या किलो घी? 500-600 रुपये में आएगा कैसे? अगर गाय का दूध निकाल के दही बना के उसका मंथन करके अगर दूध निकालेंगे घी, तो 1700 रुपया किलो घर में पड़ेगा। ये सब लोगों ने अच्छी तरह से नाप किया। अब इसमें एक परिवर्तन ये होता है, दही के बाद दूध निकालने के बाद छाछ बेच की जाती है गुजरात में, और छाछ 15-1 रुपया किलो जाती है, तो उस हिसाब से 1200-1300 में वो दूध, वो 1300 तक कोई दे सकता है अगर छाछ बेचता है तो। और जो क्रीम से बनाएगा तो उसका दूध बेचेगा तो वो 900 तक उसको पड़ सकता है, इससे कम फिर भी नहीं पड़ेगा, तो 400-500 देंगे वो खच का घी होगा, कहां से आएगा। हाँ नाम के ऊपर हम नहीं जाएंगे कि किसका भी है, इतने में आ ही नहीं सकता दुनिया में। दही बना के मंथन करके घी कोई बनाए, नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता, जो नेम है, क्योंकि जिनके पास है वो ये नाप तोल करके बैठे हैं, एक तोले का 1200 तक आएगा अगर छाछ बेची गई तो। और दूध क्रीम का, क्रीम का घी आ सकता है 900 तक, 8-9 तक क्रीम वाला, क्योंकि दूध बेच रहे हैं ना, दूध तो आपका 50-50 रुपए किलो जा ही रहा है। तो ये मैं कहने का मतलब है कि जो आज खाने को हमको चीज मिल रही है वो भी ऐसी पौष्टिक नहीं है कि आयु वर्धन हो, ये सारी हर्ष आयु है, हर्षित आयु है। अब जिसके पास बुद्धि नहीं हो, सतोगुण नहीं हो, अपने स्वस्थ का और अपनी आयु का जो ध्यान न रखे उसको क्या कहेंगे, दुर्भागा, तो उस बेचारा दुर्भागी है उसका। भाई स्वभाग किसका कैसे, भाई किसी का अच्छा भाग कब होता है, जब कोई संत साधु मिले, शास्त्र का सत्संग मिले, वो तो हुआ अच्छे भाग वाला। और दुर्भागी कौन है, इन सब चीजों से जो रहते हैं वो दुर्भागा। च जना वीक्षय, उसने व्यास देव ने दुर्भाग्यों को देखा, जना वीक्षय उन्होंने उनको देखा, भविष्य में ऐसे होगा। मुनीर दिव्य न चक्षु सा, व्यास देव ने अपनी दिव्य चक्षु से ये सब लोगों का और प्रकृति का हास देखा, गिरना देखा। सर्व वर्ण आश्रमान यत, और ये वर्ण आश्रम धर्म की जो सारा वर्ण आश्रम धर्म का विभाग है, यद दधौ हितम अमोघ दृक, तो उन सब के भले के लिए अमोघ दृक, अमोघ दृक कहते हैं जिसकी नजर में कोई भी धोखा न हो, मोघ कहते हैं पाप को, अमोघ कहते हैं निष्पाप को, जिसकी नजर निष्पाप हो बहुत। और श्रील प्रभुपाद ने यह अमोघ का लिखा है, वन हु इज फुली इक्विप्ड इन नॉलेज, तो आदमी पाप कब करता है, जब अज्ञानी होता है, तो जिस जो परिपूर्ण ज्ञान, व्यासदेव तो वैसे ही ज्ञान का अवतार है, वेद कहते हैं, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, वेद का मतलब ज्ञान, और ये वेद का विस्तार करेगा तो परिपूर्ण ज्ञान का, ज्ञान की मूर्ति है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे वर्ण आश्रम के विषय में बैठ के उनके भले का विचार किया कि इनका भला कैसे किया जाए। अब व्यास देव ने क्या देखा, व्यास देव ने काल के अदृश्य बल से प्रकृति और उनमें रहने वाले जीवों के अंदर जो आने वाले संभावी कलयुग के दोषों को देखा, और फिर उनके रहने वाले व्यक्तियों के हित के लिए विचार करने लगे। ये इस श्लोक का अर्थ है, और श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य इसमें है, हमने बताया यही, न फल मिलेगा, न धरती से काय दूध नहीं देगी, ये तो होगा संसार की प्रकृति का हास। फिर प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि व्यास देखो ऐसे पता कैसे लगा, तो दो उदाहरण देते हैं, जैसे कोई ज्योतिषी आपको पहले बता देगा कि आगे वाले समय में ग्रहण आना है, तो कैसे बताएगा, ऐसे कुछ गणना करके बता देगा। या कोई डॉक्टर आपको देख के बता देगा ये तुम्हारे को संभावी बीमारी होने वाली है, तो इस तरीके से व्यास देव को भी ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि थी, उसने ऐसे देख लिया। प्रभुपाद कहते हैं ये भक्त भगवान के होते हैं, सबका हित चाहते हैं, और फिर कहते हैं ये जो आज आपके नेता हैं ये आपका हित नहीं चाहते हैं। प्रभुपाद ने यहां अब प्रचार की दृष्टि लिख रहे हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं जो वही आपके भले की चिंतन करते हैं, लेकिन जो आजकल के सो कॉल्ड लीडर्स, सो कॉल्ड पब्लिक लीडर्स, अच्छा आप चलते किससे हो? पांव से चलते हो? चलते किससे पांव से? तो मैं पूछ लिया, कैसे चलते हैं सब लोग? हा, आंख से, पहले देखोगे तब चलोगे। इसलिए नेता वो कहे, उस नेत्र, नेता शब्द निकला है नेत्र से, जो सबको चलाए उसको नेता बोलते हैं। नेता मतलब जो आंख से देख के चलाए कि सही रास्ता कौन सा है। हम पांव से नहीं चलते, आंख से चलते हैं, आंख खुली होगी चलेंगे। जिसको आंख नहीं है वो चलता कहां है? बेचारा लाठी से चलता है या किसी को हाथ पकड़ के चलता है, पांव होते हुए भी नहीं चल सकते। तो नेता उसको कहते हैं जो नेत्र से देख के आपका हित सोचे। तो ये तो अंधे हैं, ये कहां से हित सोचेंगे? ये तो अपने हित में लगे हुए हैं सारे। तो प्रभुपाद ने, ये आपका भला नहीं कर सकते, इनको तो यह भी पता नहीं है पांच मिनट के बाद क्या होगा, तो ये क्या आपका भला करेंगे? जो भविष्य को देख नहीं सकता है वो आपका क्या भला करेगा? तो इसलिए इनके ऊपर तो भले का कभी विचार भी नहीं करना। अब प्रभुपाद कहते हैं आजकल कितना प्रभाव पड़ा है, दुष्प्रभाव इस युग का है। अब प्रभुपाद के समय में पहली बार वो टीबी की अस्पतालें खुली थी, तो लोगों को टीबी हुई थी। तो ये आज से तकरीबन समझो कि ये 65 में लिखा हुआ है, ये टुकड़ा जो लिखा है प्रभुपाद ने 64-65 में लिखा है। तब टीबी थी, अब कैंसर है, तब कैंसर का नाम भी नहीं था। तो इतना सारा दुष्प्रभाव अभी हुआ है समय के साथ। उस वक्त में प्रभुपाद जी कहते देखो टीबी की कितनी अस्पतालें खुल रही है, जो पहले कभी सुना ही नहीं था। क्यों नहीं ऐसे हो रहा था? क्योंकि उस वक्त में काल ऐसा था, उस काल में वो चीजें नहीं हो सकती थी। ये काल का प्रभाव है। जैसे हम काल, समय ऐसा है कि थोड़ा सा वृंदावन में हम देखते हैं अप्रैल के महीने में मच्छर बहुत आ जाते हैं, और मई की कड़ाके की गर्मी आती है, अपने आप मर जाते हैं। तो काल जो है बहुत सी बीमारियों का जड़ से निकाल देती है, कुछ बीमारियों लाके रख देती है। बरसात के बाद देखें बहुत सी बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। तो काल का प्रभाव बहुत सी चीजों के ऊपर पड़ता है। तो ये काल के प्रभाव के कारण ऐसे प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं कि ऐसे देखो कि कितने कितने दुख सामने दिख रहे हैं आज के दिनों में। आजकल तो अब नई कितनी नई बीमारी आ गई है, वो अब पहले कभी कोई ये मानसिक तनाव बीमारी नहीं थी, अब लेकिन अभी तो वो बहुत बड़ा मानसिक तनाव बीमारी है, डिप्रेशन है, ये सब बीमारियां पहले नहीं थी, क्योंकि दुख था ही नहीं ऐसा जिसके लिए परेशानी हो। अब श्रील प्रभुपाद लेते कौन आपका भला करना चाहते हैं? जैसे व्यास देव ने ऐसे सोचा कि कैसे सबका भला हो, और ऐसे ही इससे पहले जो भलाई का काम करे, एक शब्द है फिलंथ्रोपिस्ट, जो सबका भला करने वाले। लोग कहते हैं ये सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, ये सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, ये फिलंथ्रोपिस्ट है। प्रभुपाद जी कहते हैं सबका भला करने वाला वो है जो आत्महित के बारे में सोचे। और यहां कुछ नाम लिखे हैं कि सही माना में यही सबके शुभ चिंतक है, जैसे व्यासदेव है, आगे नारद है, मध्वाचार्य, चैतन्य, रूपा और सरस्वती। प्रभुपाद जी ने पूरी परंपरा लिख दी कि ये सब, इसका अर्थ ये है ऐसे व्यक्ति लोगों को भौतिक बंधन से मुक्त करके भगवत धाम ले जाने की व्यवस्था का, ये प्रभुपाद जी का इस्कान की स्थापना का इनका नाम लिया है, लेकिन काम ये प्रभुपाद इनके बिहाफ पे कर रहे हैं। ये इस्कान की स्थापना का मुख्य मूल उद्देश्य लोगों को कलयुग के इस दुष्प्रभाव से बचा के और धर्म के रास्ते के ऊपर चलाना है। आगे का श्लोक पढ़िए, क्या अब देखा तो करेंगे क्या? जब देख लिया तो करेंगे क्या? चतुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानाम वीक्ष है वैदिकम व्यदधाद यज्ञ संततई वेतम एकम चतुर्विधम। चातुर मतलब इसका अर्थ है चारों वर्ण। चातुर होत्रम अगर वो यज्ञ करेंगे, यज्ञ कर्म करेंगे शुद्धम, तो वो पवित्र हो जाएंगे। तो कोई भी आदमी पवित्र कैसे होगा, शुद्ध कैसे होगा? जब यज्ञ का कर्म करेगा। अब भगवत गीता में चौथे अध्याय में कोई 12-13 यज्ञों का वर्णन है, हर एक वर्ण आश्रम में यज्ञ कैसे किया जाए। सामान्य शूद्र के यज्ञ का भी वर्णन है, तो ब्राह्मण के यज्ञ का भी वर्णन है, ब्रह्मचारी के यज्ञ का भी वर्णन है, और फिर आखिर में क्या कहा, ये सारे यज्ञ ज्ञान में परिपूर्ण होते हैं, और फिर उस ज्ञान को प्राप्त करना है तो किसी साधु के शरण में जाके बैठना पड़ेगा। तो असल में यहां कहा यह जाएगा कि यह यज्ञ कौन सिखाएगा, बोला वे ज्ञान सिखाएगा। ज्ञान कहां से आएगा, वेद से आएगा। तो इसलिए चातुर होत्रम, होत्रम का मतलब यज्ञ करना, और यज्ञ भी बहुत प्रकार के हैं, लेकिन यहां जैसे स्वाध्याय भी यज्ञ है, शास्त्र पढ़ना यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है, प्राणायाम यज्ञ है, ये सब चौथे अध्याय के 12-13 यज्ञ है। तो चतुर होत्रम कर्म शुद्धम, इससे हमारे कर्म की शुद्धि होती है, हमारे कर्म की शुद्धि यज्ञ से होती है। किसी ने पूछा, किसी ने कहा महाराज ये 100 ग्राम घी और 2x2 के चोकोर लकड़ी के कुंड में डालने से कैसे शुद्धि होगी वातावरण की? तो महाराज जवाब नहीं दिया, बोला थोड़ी गोबर का कंडा जला के ले आओ। वो लाए, बोला लाल मिर्ची थोड़ी लाओ और उसके ऊपर थोड़ी मिर्ची छड़क दी, तो जितने बैठे थे सब खांसने लगे। बोला ये क्या हो गया? हाँ खांस क्यों रहे हो? बोला महाराज ये मिर्ची डाली है आग में, इसमें खांस रहे हो? बोला इतनी मिर्ची सबको खांसी करा सकती है, तो इतना घी क्या सबका गला ठीक नहीं कर सकता क्या? ये तो मिर्ची अगर इतना काम कर सकती है तो आप ऐसे। और फिर कहा कि देखो मैं बात कर रहा हूं इस माइक्रोफोन से तो कितने लोगों को सुनाई दे रहा है, तो अग्नि में थोड़ी सी चीज को डालने से बहुत बड़ी करने की शक्ति है, ये माइक्रोफोन से आवाज बढ़ रहा है। देखो ऐसे यज्ञ में डालते हैं तो वातावरण शुद्ध होता है, लोगों की मानसिकता शुद्ध होती है। कहीं मैं सुन रहा था कलकत्ते के अंदर यज्ञ करने का अनुष्ठान किया और शुद्ध देसी गाय का घी था, तो सरकार के लोग आके चारों ओर खड़े हो गए कि यहां आप यज्ञ नहीं कर सकते हो। जैसे हमने कहा है आप बड़े शहर में गाय नहीं बांध सकते हो, ऐसे कहा यज्ञ नहीं कर सकते हो। बोला क्यों? बोला प्रदूषण होगा, इतना सारा धुआं होगा वातावरण में। तो महाराज ने कहा एक बात सुनो, आपके पास कोई यंत्र है प्रदूषण को चेक करने का? बोला हम तो करते हैं, गाड़ियों का भी करते हैं, धुआं निकलते हैं, तो प्रदूषण चेक का यंत्र थे। बोला चारों ओर लगाओ, हम यज्ञ शुरू करते हैं, पहली आहुति डालते हैं और धुआं निकलेगा, तुम्हारा प्रदूषण का यंत्र अगर कहे कि वातावरण शुद्ध हो रहा है तो करने देना, नहीं तो बंद कर देंगे। यज्ञ का आरंभ किया और यज्ञ में आहुति डाली और प्रदूषण वाली सारी मशीनों में ग्रीन लाइट है, बहुत अच्छा ये बहुत अच्छा होने लगा। अब क्या करें? तो बोले यज्ञ दबा के करो। तो असल में बात है कि अब प्लास्टिक वाले घी से यज्ञ करेंगे तो वातावरण ऐसे भी दूषित होगा, दुई घी है कहां जो यज्ञ करेंगे। तो उच्चारण करने वाला यज्ञ अगर शुद्ध वृत्ति से किया जाए तो उसका प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता है। वो आदमी के वातावरण को शुद्ध नहीं करते, आदमी की मानसिकता को भी शुद्ध करता है। तो ये यज्ञ से चारों वर्णों की शुद्धि होती है। प्रजानाम व्यक्त वैदिकम, प्रजानाम वीक्षय वेदितम। उन्होंने देखा प्रजा का भला कैसे होगा जब वैदिक विधि से यज्ञ करेंगे, लेकिन ये यज्ञ बेचारे कर नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे? वैद्याद यज्ञ संतया वेदम एकम चतुर्विधम। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आसान कर दिया यज्ञ के कार्य को। कैसे आसान कर दिया यज्ञ के कार्य को? एक वेद को चार में विभाजित करके विस्तार कर दिया, क्योंकि सतयुग में एक ही वेद था, वेद व्यास ने उस एक वेद को और सरल करके चार में विभाजित कर दिया, और उसके अंतर्गत लोग कुछ न कुछ अपने लिए कर सकते हैं। और फिर जब ये यज्ञ से शुद्धि होती है, इस प्रसंग के ऊपर और अगर चर्चा करेंगे तो भगवत गीता में ये ध्यान आएगा कि भगवान ने तो सीधा कह दिया सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा प्रोवाच प्रजापति अनेन वे प्रसुद्धम यज्ञ इष्ट कम दुकाम दुख। मैंने जब सृष्टि की पैदा किया, देवताओं को पैदा किया, मानव को पैदा किया और साथ में यज्ञ को पैदा किया, तो यज्ञ भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष है, उसने यज्ञ को पैदा किया और फिर कहा मैंने आदेश दिया है तुम ये यज्ञ करो, ये कामधेनु है, ये तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी करेगी। कौन सी इच्छाएं पूरी करेगी? इच्छाओं को शुद्ध कर देगी और तुम फिर भगवान की भक्ति मांगोगे, संसार नहीं मांगोगे। तो आप यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो। और फिर इसी अध्याय में एक प्रकृति का चक्र है कि आप यज्ञ करोगे तो बरसात होगी, बरसात होगी तो अन्न होगा, अन्न होगा तो आप खाओगे, आप खाओगे तो फिर आप कर्म करोगे, कर्म करोगे तो कर्म कहां से आएगा? तो वेद ने आपको कर्म करने की विधि बताई है, वेद कर्म करने की विधि बताया, कर्म से यज्ञ होगा, यज्ञ से वर्षा होगी, वर्षा से अन्न होगा और अन्न से सबका निर्वाह होगा। तो ये चक्कर चलता है यज्ञ का, ये यज्ञ की साइकिल है और ये साइकिल कहीं टूट गई तो सब कुछ बिगड़ जाता है। इसलिए यज्ञ तो हर हाल में करना चाहिए, लेकिन यज्ञ करने की विधि कहां बताई हुई? बोला वेद में बताई हुई। वेद व्यास ने तो ये 5000 साल से ज्यादा बैठ के पहले ऐसा विश्लेषण किया था, लेकिन उसके बाद 500 साल पहले, 21 साल से पहले जो भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट्य हुआ, इस वेदव्यास की अपनी कृति में, वेदव्यास की कृति है भगवद गीता, भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने बोला, लेकिन वेदव्यास ने उसको महाभारत के अंदर लिखा, लिखवाया गणेश जी से। उसके अंदर व्यास देव ने ही भगवान की वाणी को अंकित किया है। सारे यज्ञों में सबसे ज्यादा शुद्ध करने वाला यज्ञ है जप यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि। ये दसम स्कंद, दसवें अध्याय भगवद गीता का श्लोक है कि जितने भी यज्ञ है उसमें शुद्ध करने वाला यज्ञ ये जप नाम का यज्ञ है। अब आप देखिए जहां शुद्धि का बात आती है, कहते हैं दो प्रकार की शुद्धि होती है, बाहर की शुद्धि स्नान से होती है और अंदर की शुद्धि नाम से होती है, नाम के जप से होती है। तो यहां लिखा है चतुर्वर्णों को, सही माना में कहा जाए तो चार वर्ण सब यज्ञ नहीं कर सकते। जैसे अश्वमेध यज्ञ क्षत्रिय को करना है, वाजपेयी यज्ञ ब्राह्मण कर सकता है, वैश्वानर यज्ञ वैश्य करते हैं, हर एक यज्ञ करने का विधान है, लेकिन यहां चतुर्वर्ण कौन सा यज्ञ करे? ये जप ऐसा यज्ञ चार वर्ण कर सकते हैं, ये तो चार वर्ण आराम से कर सकते हैं, किसी को भी इसमें नहीं नहीं कहा गया है, सभी कर सकते हैं, ये ऐसा यज्ञ है चारों वर्ण करके और शुद्धि अपनी कर सकते हैं, बाहर की अंदर की शुद्धि कर सकते हैं, आंतरिक शुद्धि भगवान के नाम के ऊंचा, मन पवित्र हरि नाम लिए, धन पवित्र दियो दान, तन पवित्र सेवा किए, सेवा करेंगे तो शरीर पवित्र होगा, दान करेंगे तो धन पवित्र होगा और नाम जपेंगे तो मन पवित्र होगा, चेतो दर्पण मार्जनम। तो शुद्धि, अब ये यज्ञ बता दिया सबको जप करना चाहिए, शुद्धि के लिए बहुत जरूरी है, चतुर्वर्णम की शुद्धि के लिए बहुत जरूरी है। फिर चैतन्य महाप्रभु ने आके थोड़ा और आसान कर दिया, बच्चे जप नहीं कर पा सकते हैं, बूढ़े जप नहीं करते हैं, कोई एक तो मुझे कहता है मेरी उंगली नहीं चलती है जप कैसे करूं, तो कहा कि बहुत आसान है, संकीर्तन यज्ञ करो, सब बैठ के परिवार घर में भगवान के नाम का कीर्तन करना। पहले भी कहा था और आप भी कहो, हमारी कांग्रीगेशन में, सब जगह की बात कर रहा हूं, घर में आधा घंटा कीर्तन का नियम बनाना चाहिए, वो आस्ते आस्ते नहीं हो रहा है, और काम हो ना हो लेकिन कीर्तन घरों में होने का एक वातावरण पैदा हो तो बच्चे उसमें भाग ले लेंगे, और ये कीर्तन होना चाहिए, ये महायज्ञ है, ये हर घर में रोज यज्ञ होना चाहिए। पहले अग्निहोत्री महाराज होते थे, रोज यज्ञ करते थे, ये नेम हुआ करता था, लेकिन संकीर्तन यज्ञ तो पूरा परिवार रोज कर सकता है एक समय, तो ये यज्ञ करना चाहिए। उन्होंने एक वेद को चार में विभाजित की कर दिया और आगे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि चार वेदों के नाम तो सबको मालूम है, ऋक्साम यजु अथर्वेद, लेकिन पुराण आदि को भी महाभारत को पांचवा वेद कहते हैं, ये उपनिषदों में छांदोग्य उपनिषदों के अंदर लिखा हुआ है कि ये जितने पुराण आदि है इनको भी पांचवा वेद ही कहते हैं। अब आगे कैसे काम किया उन्होंने, 20वां श्लोक पढ़ते हैं। इस श्लोक में असल में जो तात्पर्य है 19वें श्लोक का, वो इसमें अपने आप आ गया। ऋक यजुर्साम अथ्राख्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद कहा जाता है, आख्या मतलब कहा जाता है, वेदास वेदों को, चत्वार ये चार, उद्धृतः इस तरीके से चार वेदों के नाम बता दिया, और इतिहास का मतलब महाभारत, इतिहास का मतलब महाभारत और रामायण दो हमारे मुख्य इतिहास हैं। पुराणाम का मतलब 18 पुराण, च और भी उनके अंग, पंचमो वेद उच्यते उसको पांचवा वेद कहते हैं, वो चार वेद और पांचवा वेद, विशेष रूप से महाभारत को तो पांचवा वेद कहते ही है। और आगे का श्लोक पढ़िए 21वां। तत्र ऋग्वेद धरः पायलः सामगो जैनमी कविः वैशपायन च एवाको निष्णातो यजुसाम उता। तत् उसके बाद ऋग्वेद धर पायल, धर का मतलब जिसने धारण किया, पायल ऋषि को ऋग्वेद को धारण करने वाला आचार्य बनाया, व्यासदेव के शिष्य हैं ये। व्यासदेव ने पायल ऋषि को कहा कि आप ऋग्वेद को धारण करो और आगे अपने शिष्यों से इस परम कार्य को चलाओ। प्रभुपाद ने धारा का अर्थ लिखा है प्रोफेसर, ऋग्वेद का प्रोफेसर कौन बोलो, पायल। सामगो जैनमी कवि, जैमनी कवि जो है, कवि का मतलब विद्वान, वो हो गया सामवेद का आचार्य। वैश्पायन एवेको निश्चितो यजुषाम उता, और वैश्पायन जी बड़े विद्वान, वो यजुर्वेद के विद्वान हुए। तो ये चार, कौन सा किस वेद का प्रोफेसर हुआ, तीन की बात आई, अभी चौथे की बात आ रही है। अथर्व अंगिरस सामासित सुमंत्र दारुण मुनि इतिहास पुराणानां पिता मे रोम हर्षण। अथर्ववेद अंगिरा ऋषि को दिया गया, जिसका दूसरा नाम है समंतर, और वह बहुत बड़ा विद्वान मुनि था। तो ये दो नाम है अथर्ववेद के आचार्य का, अंगिरस और सुमंतुर, ये दोनों उसके नाम है, अंगिरा ऋषि अंगिरस। और इतिहास मतलब महाभारत और पुराण मेरे पिता, ये उग्रसर्वा कहते हैं, मेरे पिता रोमहर्षण ऋषि को उसका आचार्य बनाया। तो ये किस किस को क्या दिया, ये बुद्धि में रखने के लिए लिखना चाहिए कौन से वेद का कौन सा आचार्य है, और पुराणों के आचार्य रोमहर्षण है। अब इसके बाद का श्लोक पढ़ें। फिर इन्होंने क्या किया आके, तदेतत् ऋषयो वेदम् स्वं स्वं व्यसन ए अनेकधा शिष्यै परशिष्यै तत्शिष्यै वेदास्ते शाखिनो अभवम्। इन ऋषियों ने वेदों को स्वयं स्वयं अपने अपने आगे एक से अनेक शिष्य परशिष्य परशिष्यों के द्वारा बहुत शाखाएं वेदों की बनाई। तो वेदों की शाखाएं होती हैं कि इस शाखा का ये परंपरा चली, इस शाखा में ये ऋग्वेद के परंपरा वाले हैं, ये यजुर्वेद के परंपरा वाले हैं, तो इस प्रकार से इनकी शाखाएं आगे चली। अब आगे व्यासदेव क्या कहते हैं, ततेव वेदा दुर्मेधे धार्यन्ते पुरुषैर यथा एवं चकार भगवान व्यासः कृपण वत्सला। जो व्यास देव है उसका विशेषण है कृपण वत्सला। वत्सल कहते हैं प्रेम करने वाला, हितेशी, शुभ चिंतक। जैसे गाय को, नवजात बच्चे को कहते हैं वत्स, और उसको चाट के साफ करे, उठा के दूध पिलाए, उस गाय को कहते हैं वत्सला। गाय का नाम है वत्सला, और नवजात गाय के बछड़े को कहते हैं वत्स। और व्यास देव भी क्या है, वत्सल है, गाय की तरह वत्सला है। किसके ऊपर? कृपण। अब कृपण की क्या परिभाषा है? एक कृपण की परिभाषा है कंजूस, लेकिन यहां कृपण की परिभाषा है मानव शरीर धारण करने के बाद आत्मा के उद्धार का चिंतन न करे, वो कृपण। यहां कृपण ऊपर लगेगा दुर्मेधेर। कृपण कौन है? जो दुर्मेधी है, और दुर्मेधी वही है जिसकी बुद्धि कम है, कम बुद्धि वाले कृपण। अच्छा, कम बुद्धि वाला कृपण कंजूस क्यों होता है? आत्मा के काम में क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उस बिचारे के ऊपर काम का इतना भार होता है कि आत्मचिंतन के लिए समय नहीं मिलता है। बोला किसको? बोला मजदूर है, क्या करेगा बेचारा। सुबह 5 बजे उठ के काम पे जाता है, शाम को 5 बजे तक काम करता है, थका हुआ आता है, सारा दिन श्रम करता है, परिश्रम करता है, तो कब बैठ के वो आत्मा का चिंतन करे? वेद के गुरु के आश्रम में जा नहीं सकता है, तो वो कैसे जाके चिंतन करे? उसके लिए संभव नहीं है। उनके ऊपर कृपा करने के लिए ऐसे व्यवसाय वाला है, धंधे के ऊपर सुबह जाना है, शाम को आना है, सारा दिन उसी का चिंतन में रहना है, तो कब बैठ के शास्त्र पढ़े? ये घर परिवार संभालना है, स्त्रियों को कब जाएंगे, कैसे शास्त्र पढ़ेंगी? तो इनके हित के लिए उन्होंने बहुत बड़ा विचार किया। भगवान वेद व्यास ने कृपण वत्सल है, एक और अर्थ भी कृपण का है। 6 शरणागति के 6 अंग है, उसमें एक कृपण अंग है। कृपणता शरणागति का अंग है। जब अर्जुन कहता है कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, वो कृपणता जो है अर्जुन की शरणागति की है। तो 18वें अध्याय के इस सर्वधर्मान वाले श्लोक में एक श्लोक लिखा हुआ है जिसमें 6 शरणागति के लक्षण है, उसमें एक कृपण है, 6 में से एक लक्षण कृपण है। तो जो शरणागत वत्सल भी कहा जा सकता है, जो कैसे भी धर्म का पालन करना चाहते हैं लेकिन बुद्धि नहीं है संस्कृत पढ़ने की, आज ऐसा, अब आज के दिन में यहां लिखा लिखना पड़े तो हम लिखेंगे प्रभुपाद कृपण वत्सला। प्रभुपाद कृपण वत्सला कैसे हैं? बोला है, कोई संस्कृत पढ़ नहीं सकता है, सारे शास्त्र संस्कृत में, और भगवान सबका है। अब सबका अगर भगवान है तो सब कैसे पढ़े? तो सब भाषाओं में अनुवाद करके वो अंग्रेजी भाषा से ये शास्त्र दिया। तो प्रभुपाद बहुत बड़े कृपण वत्सल है असल में आज कहा जाए तो। इसलिए सतोगुण में जो बहुत आगे बढ़े हुए हैं, अभी क्लास खत्म होते ही सारी भागवत लेके आएंगे प्रभुपाद कृपण वत्सल के प्रसाद को पाके अपने जीवन को सफल करेंगे। क्या श्लोक में लिखा है? कार्पण्य है उसमें, आत्म कार्पण्य शरणागति का लक्षण भी है। तो अब वेदव्यास ने किया क्या? स एव वेदा, निश्चित रूप से जो वेद है दुर्मेधा, जिसके पास कम बुद्धि है वो उसका अध्ययन नहीं कर सकता है। धार्यन्ते, उसको कैसे वो समझेगा, धारण नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्तियों ने चकार, इसलिए उसके अंदर उसने थोड़ा सा आसान किया वेदव्यास ऋषि कृपण वत्सल ने। क्यों उन्होंने एक को 4 में विभाजित किया? क्योंकि वेद को पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। अब कोई ब्राह्मण के स्तर के ऊपर लोग तो है नहीं, तो उसको वेद को पढ़ कैसे पाएगा? इसलिए कभी कहते हैं ज्ञान का मार्ग वेद से होता है, और उसके लिए ब्राह्मण होना है। अब जब कई अभी साधन करे, अभी ब्राह्मण का जन्म हो, तब वेद पढ़ सकता है। तो ये तो संभव नहीं है कि सब लोग कर पाए, क्योंकि जब ये प्रश्न 6 स्कंद भागवत में आता है कि पाप का प्रायश्चित कैसे हो, तो दूसरा उत्तर सुखदेव महाराज ने दिया, ज्ञान प्राप्त हो जाए, तपस्या करे, तो आदमी पाप करेगा ही नहीं। तो परीक्षित महाराज कहते सब कैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे, सबको थोड़ी ज्ञान प्राप्त करना आसान है और सब थोड़ी तपस्या कर पाएंगे, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी पाप करने का बीज तो रह जाता है। अब अजामिल ब्राह्मण था, वेद पढ़ा हुआ था, तपस्या कर रहा था, यज्ञ कर रहा था, लेकिन कोई ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ तो उसके अंदर जो पाप अंदर छुपा हुआ था करने की प्रवृत्ति वो तो जागृत हो गई। तो इसका मतलब ज्ञान बीज को नष्ट नहीं कर सकता, पाप के बीज को ज्ञान नष्ट नहीं करता है। इसलिए नाम जो है बीज को जप, इसलिए कहते हैं तीसरा उत्तर दिया कि नाम जपने से, हम तो कहते हैं अगस्त ऋषि भगवान की पूजा करते हुए 3 बार भगवान की ओर हाथ उठा के कहा, मैं सत्य कहता हूं कि ये कथा अजामिल ने केवल नारायण का उच्चारण किया और यम दूतों के यम फांस से बच गया। तो ये जो भक्ति का रास्ता है ये पाप करने की प्रवृत्ति को जड़ से निकाल के बाहर देता है, ये ज्ञान नहीं कर सकता। तो यहां व्यासदेव ने देखा कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये वेद तो केवल ब्राह्मण कहते हैं हमारे लिए ही है। प्रभुपाद जी यहां कुछ सिद्धांत बता रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हम ब्राह्मण हैं हम ही वेद को पढ़ेंगे, और दूसरे ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि ये तो भाई हमारे से अन्याय है, हमारे को क्यों नहीं वेद पढ़ने दिया जा रहा है। प्रभुपाद ये दोनों गलत हैं, ये दोनों ठीक नहीं है, दोनों सही रास्ते के ऊपर नहीं है। क्यों? बोला ब्रह्मा जैसे 4 माथे वाले बुद्धिमान को भी वेद समझाना पड़ा तो कोई कहे कि मैं वेद पढ़ लूंगा और कोई कहे कि मुझे पढ़ना नहीं है, दोनों मूर्ख हैं, दोनों को सही रहा। जब ब्रह्मा को भी वेद समझाने की जरूरत पड़ गई तो ये अपने आप वेद कैसे पढ़ पाएंगे। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं सारे वेदों का उद्देश्य कृष्ण को जानना, तो बताओ कि कोई ब्राह्मण जो वेद पढ़ते हैं वो कृष्ण को जानते हैं क्या, या जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है वो कृष्ण को जानते हैं? तो दोनों को ही सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है, ये तो तब मिलेगा जब कोई सिखाने वाला मिलेगा। तो प्रभुपाद जी यहां वो श्लोक उद्धृत किया है, वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। फिर प्रभुपाद जी कहते सत्ययुग में सारे लोग सत्वगुण में थे, जैसे युग बदलते गए लोगों के अंदर दुर्गुण आते गए, अब तो कलयुग तो ऐसा है कि इसमें सत्वगुण तो मिलता ही नहीं है, नहीं के बराबर है। इसलिए दयालु व्यास देव ने वेदों को 4 में विभाजित किया और उसको कैसे ये लोग समझ सके और रजो और तमोगुण से ऊपर उठ सके, इसलिए उन्होंने सरल कर दिया। अब 26वां श्लोक है ना 25वां, ये पढ़ लीजिए। स्त्री शूद्र जीवर बंधु द्विज बंधु नाम त्रैना श्रुति गोचरा करम श्रेयसी मूढ़ा नाम श्रेयैवं भवेद इह इति भारतम् आख्यानम् कृपया मुनिना कृतम्। स्त्री शूदर द्वेज बंधु नाम, यहां स्त्री शूदर और द्वेज बंधु नाम, द्वेज बंधु नाम का मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के घर में जन्म लेने के बाद भी उस कर्म से वंचित हो उसको कहते हैं द्वेज बंधु। त्रयी न श्रुति गोचरा, ये तीनों वेद का अध्ययन करना इनके लिए संभव नहीं है, ये वेद के अध्ययन करने में समर्थ नहीं है। कर्म श्रेयसी मूढ़ा नाम श्रेय एवं भवेद ही है, वेद व्यास ने कहा ये बिचारे जो भले काम को नहीं कर सकते हैं उसमें अटक जाते हैं। मूढ़ का अर्थ होता है अटकना, कोई चीज कहीं अटक जाए उसको कहते हैं मूढ़, मूढ़ का मतलब अटक, अकल अटक जाए, समझ नहीं पाए उसको मूढ़ कहते हैं। इनके लिए क्या किया, श्रेय एवं भवेद, इन सबका ही है इस धरती के ऊपर इन सबका कल्याण हो, इनका भला हो, इसलिए क्या किया, इति भारतम आख्यातम, जिसको महाभारत कहते हैं उसको प्रकट किया। कृपया कृपा करके मुनिना मुनि ने इसको तो कहते हैं कि जो वेद पढ़ने में अधिकार नहीं रखते हैं अथवा उनकी समझ में नहीं आता है, और वो कौन कौन है इसमें, ये स्त्री शूदर द्वेज बंधु नाम। श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य में द्वेज, द्वेज शब्द के लिए एक भाव लिखा है, दो जन्म जिसके होते हैं, पहला जन्म माता पिता से होता है तो वो पहला जन्म हो गया, और दूसरा जब गुरु का आश्रय लेकर शास्त्र का अध्ययन करता है तो उसको दूसरा जन्म कहते हैं। तो जो जो दीक्षा के मार्ग में नहीं जाता है वो द्वेज नहीं हो पाता है, तो वो द्वेज बंधु ही रह जाता है, भले ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेकिन शास्त्र अध्ययन कर नहीं कर पा रहा है तो वो द्वेज बंधु कहलाएगा। तो ऐसे द्वेज बंधु को भी महाभारत पढ़ने का, महाभारत में ऐसी ऐसी कहानियां लिखी हैं कि रुचि से लोग पढ़ सकते हैं, तो इनके लिए व्यास देव ने महाभारत की रचना की। इसका तात्पर्य लंबा है, प्रभुपाद जी का लेक्चर भी है, आप इसको आज घर जाके पढ़ना। कम लोगों को कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं, बच्चों को भी कहानियां अच्छी लगती हैं, इसलिए महाभारत कहानियों से भरा हुआ है, और भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता बोला, व्यास देव ने महाभारत में रख दिया, तो ये कहानियों के बीच में भगवद गीता के माध्यम से लोग उस परम वेदों के सार तत्व को जान सकते हैं, ऐसा व्यास देव ने बहुत सुंदरता से इसको रखा है महाभारत के बीच में। और सुचेतन महाप्रभु ने इस भक्ति का जो प्रचार किया, पे लास्ट में श्रील प्रभुपाद चेतन महाप्रभु का नाम लिखते हैं, इसका तात्पर्य सामने पढ़ा है, थोड़ा पढ़ लो, अच्छा अच्छा श्लोक है, पढ़ लो भैया तात्पर्य, यहां से आगे कल पढ़ेंगे, हम सोच रहे थे पूरा हो जाएगा अध्याय लेकिन हुआ नहीं, इसको पढ़िए तो थोड़ा। Out of compassion, the great sage thought, it wise that this could enable man to achieve the ultimate goal of, thus he compiled the great historical narration called Mahabharata for the women, lovers and friends of the twice born. ये 25वां श्लोक जो है इसके भावार्थ को थोड़ा सा देखिए। पहले क्या है वो तो सीधा है, किसको कहते हैं द्वेज बंधु, ये तो बात हो गया, उसके बाद दो जन्म होते हैं ये भी बता दिया, और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं संस्कार। अब ये किसको शूदर कहा जाए, तो बोला शूदर उसको कहा जाए जिसने संस्कार नहीं किया है, और पहला संस्कार गर्भदान है, उससे पहला जन्म होता है, पहला जन्म ही गर्भदान संस्कार से होता है, अगर गर्भदान संस्कार नहीं हुआ तो समझो कि पहला जन्म ही हुआ, और दूसरा संस्कार विशेष रूप से यज्ञोपवीत संस्कार है, वो दूसरा जन्म है, क्योंकि गुरु यज्ञोपवीत करता है तभी उसको वेद विधा विद्या पढ़ने का अधिकार देता है। तो पहला संस्कार तो सबका किया जा सकता है गर्भधान, लेकिन दूसरा यज्ञोपवीत संस्कार प्रायः बहुत सबका नहीं होता, जैसे स्त्री को नहीं जनोई पहनने का विधान आज तक नहीं है, तो ये ऐसे ही चलता आ रहा है क्योंकि ये संभव नहीं है, तो इसलिए, और ऐसे नहीं मानना चाहिए कि स्त्रियां सीख नहीं सकती हैं, भागवत के अंदर देवहूति के बहुत बड़े विस्तार से सांख्य दर्शन को समझना, कुंती महारानी की प्रार्थना की गहराई, ऐसे बहुत सी महाभागवत नारियां हैं जो शास्त्र को न केवल समझ नहीं पाए हैं लेकिन बहुत लोगों को समझाने का, जाह्नवा माता जी तो सारे वैष्णव की प्रतिनिधि रही हैं, तो ऐसा नहीं, इसको ऐसा नहीं, सार्वजनिक नहीं मानना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ है कि सामान्य रूप से ऐसे होता है, लेकिन इस एक्सेप्शंस हमेशा रहती हैं, कुछ महान लोग कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये संस्कार आजकल हो नहीं रहे हैं, और इन लोगों को आजकल माता पिता को ये सारे संस्कार करना आते नहीं है, इसलिए ये सब द्वेज बंधु कहलाते हैं। बस एक शादी के अलावा लोगों को तो कुछ और संस्कार याद ही नहीं है। ये लोग तो केवल शादी का, वो भी अब संस्कार समाप्त हो रहा है, अब वो भी कंप्यूटर के ऊपर यज्ञ करते हैं, आग तो जलाते ही नहीं है। अगरबत्ती भी कंप्यूटर वाली, कंप्यूटर वाली आज अगरबत्ती वो आती है ना बिजली से जलने वाली, पर अगरबत्ती जला के करे क्या? दो अगरबत्ती जलाते हैं, एक मच्छर भगाने की, वो मच्छर जाता नहीं है, दूसरी भगवान को बुलाने की, भगवान आता नहीं है, तो अगरबत्ती जला के करें क्या? दो अगरबत्ती जलाते हैं और दोनों काम नहीं करते, न मच्छर जाता है और न भगवान आता है, तो ये तो अगरबत्तियों जलाना ये काम तो खत्म हो गया। तो अब महाभारत की रचना कर दी उन्होंने। आइए अब आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। अब व्यास देव के विचार में कुछ और परेशानी चालू हो गई, नारद को आना चाहिए। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्वेजाः सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद् दृढ्यं तथा एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयद्वेजाः। अब सूत गोस्वामी कहते हैं हे ब्राह्मणों, ऐसे इतना बड़ा प्रवृत्त से, इतने बड़े काम में लगे हुए व्यास देव ने एक वेद को चारों में विभाजित किया, फिर महापुराण लिखे, फिर महाभारत लिखा, काय के लिखा, भूतानाम श्रेयसी द्वेज, भूतानाम सब प्राणियों का हित करने के लिए, उनका अल्टीमेट बेनिफिट हो, उनका कल्याण हो, इतना सारा प्रयास किया, सर्वात्म के नापि यदा ना तुष्यत, फिर भी पूर्ण रूप से स्वयं संतुष्ट नहीं था। व्यास देव ने इतना बड़ा प्रयास किया, इतना बड़ा आविष्कार किया, वेद के एक से चार किया, पुराण महाभारत सब लिख दिया, 17 पुराण 108 उपनिषद, सर्वात्म केनापि सारे इतने सारे करने के बाद भी न तुष्यद हृदयम, अपने हृदय में न तुष्यद हृदयम, अपने हृदय में संतुष्टि नहीं हुई, इस सब कुछ करने से अपना हृदय संतुष्ट नहीं हुआ। तो जब तक किसी काम से हृदय संतुष्ट नहीं हो तब तक समझना चाहिए अब काम, अभी तक काम अधूरा है। तो अब व्यासदेव क्या सोच रहे हैं, नाति प्रसीद हृदय सर्वत्यास्तटे सुचहो वित्रक्यं विवेक्तस्था इदं चोवाच धर्म वेत। अब दोबारा व्यास देव जो धर्म को जानने वाले, धर्मवित्त धर्म को जानने वाले ने क्या किया, क्या किया, सरस्वती के तट के ऊपर पवित्र होके फिर ध्यान में बैठ गए। क्यों ध्यान में बैठे, ना अति प्रसदे हृदय, हृदय में अति प्रसन्न नहीं हुआ, अब कुछ कमी रह गई, हृदय में अति प्रसन्न नहीं हुआ, अति प्रसिद्ध न हृदय, हृदय में अति प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए सरस्वती के तट के ऊपर फिर ध्यान में बैठ गया। धर्म को जानने वाला व्यासदेव क्यों बैठ गया, विचार करने लगा कि क्यों इतना कुछ करने के बाद भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं। तो अब उन्होंने अपने साधन के ऊपर विचार किया, ये सारा विचार है साधन का, जब तक ये साधन होते हैं तो कुछ हाथ आता है। धृतवृते नहीं मया छंदांसि ही गौरवो अग्नयः मानिता निर्व्यलिकेना गृहेत चानुशासनम भारत व्यपदेशेन हय आम्नातार्थश्च प्रदृष्टः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादिभिरप्युता। कहते हैं मैंने दृढ़ व्रत धारण किया, छंदांसी, मैंने वेद का पाठ किया, गुरवो और गुरुओं की सेवा की, अग्नि अग्निहोत्र यज्ञ किया, और ये सब कैसे किया? मानिना निर्मल, इसमें कोई मैं कपट नहीं किया, शुद्ध हृदय से किया, दिखावे के लिए नहीं किया। निर्विकल्पन का मतलब दिखावे के लिए करना, तो मैंने दिखावे के लिए नहीं किया। गृहितम चानुसार, अपने आप को अनुशासन में रखा, इंद्रियों को संयम में रखा, मन को एकाग्र किया, और यहां तक के महाभारत को भी प्रकट कर लिया, और जिससे सबका कल्याण हो जाएगा, जिसमें धर्म का सारा मैंने सार रख दिया। तो ये लिखा है, मैंने सारे नियमों का पालन किया और वेदों की पूजा की, गुरुजनों की पूजा की, अग्नि की पूजा की, अग्निहोत्र यज्ञ किया, मैं सारे ही नियमों का पालन किया, संयम में रहा, महाभारत को भी विस्तार से समझाया, उससे स्त्री शार्मिक लोग और दूसरों का भी भला हो जाएगा, और धर्म के रास्ते पे वो चलेंगे, धर्म को जान पाएंगे। प्रभुपाद का पहली लाइन तात्पर्य किया, कोई भी वेदों के सार को नहीं जान सकता जब तक संयम जीवन में नहीं हो, एक संयम नहीं हो और दूसरा परंपरा से शिक्षा न हो। दो चीजों की बात लिखते हैं कि वेदों के सार को जानने के लिए एक जीवन में संयम चाहिए, इंद्रियों का संयम, मन का पवित्र होना, और दूसरा परंपरा से शिक्षा ग्रहण करना। ये दो बातें हैं, एक चाहिए संयम और दूसरा चाहिए परंपरा। अब स्वयं वेदव्यास कहते हैं, क्या रह गया ये सुन लीजिए, तथापि बत मे धेयो देयो भय आत्मा चैवात्मना विभो असंपन्नवा भाते ब्रह्म वरचस्य सत्तमः। तथापि, फिर भी, इतना सारा मैंने साधन किया है, फिर भी क्या कम है, बत क्या कमी रह गई मुझ में, देह है शरीर में, अभी क्या कमी मुझ में रह गई, इतना कुछ करने के बाद मैं असंपन्न, मैं संपन्न नहीं हूं, और कैसे मैं लग रहा हूं, मैं असंपन्न लग रहा हूं, इतना कुछ करने के बाद भी ब्रह्म वर्चस्य सत्तमः, ऐसे लग रहा है मैं अपने आप में कुछ कमी महसूस कर रहा हूं, और जबकि मैं सारे शास्त्रों को अच्छी तरह से, वेद के साधनों को जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने आप में क्यों कमी महसूस कर रहा हूं, इतना सारा मैंने ठीक तरह से कहा है, और फिर स्वयं कहते हैं कमी क्या है, ये कमी है। व्यास देव को अपने हृदय से अपनी कमी का पता लगा। किम वा भागवता धर्म न प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानाम तैव हे अच्युत प्रियः। किम वा, ऐसे तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है, इतना सब करने के बाद क्या रह गया, क्या कमी रह गई। भागवत धर्मान प्रायण निरूपित, मैंने भागवत धर्म का निरूपण किया ही नहीं है, ऐसे तो नहीं है कहीं मैंने भगवान की भक्ति जो भागवत धर्म कहलाती है उसका निरूपण नहीं किया है। ये भक्ति किसको अच्छी लगती है? प्रिय परमहंसानाम, जो परमहंस है उसको बहुत अच्छी लगती है। और प्रभुपाद के तात्पर्य में है कि ज्ञानी वेद पढ़ने वाले परमहंस नहीं कहलाते, परमहंस केवल भागवत धर्म वालों को कहते हैं, परमहंस वेद पढ़ने वालों को नहीं कहते, उनको विप्र कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, उनको परमहंस नहीं कहते। तो भागवत धर्म के पालन करने वाले परमहंस हैं, और वो परमहंस क्यों है, और भागवत धर्म परमहंसों को क्यों प्रिय है? यते भी अच्युत प्रिय, क्योंकि ये भगवान अच्युत को प्रिय है, और परमहंस अच्युत को प्रिय है। जो भगवान को प्रिय है और जिनको भागवत धर्म प्रिय है लगता है कि मैंने उसका निरूपण ठीक तरह से नहीं किया है। और जैसे ये विचार आया उस वक्त नारद ऋषि वहां प्रकट हुए। इसके आगे वाले श्लोक में नारद ऋषि यहां प्रकट होंगे। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने भागवत धर्म का लिखा है। अब नारद जी कैसे प्रकट होते हैं? तस्यैवं खिलम् आत्मानाम् मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदो अभ्यागात् आश्रमं प्राग उदाहृतम्। तस्यैवं खिलम् आत्मानाम्, जैसे ही अपने मन में ऐसे कुछ कमी महसूस कर रहा था, खाल खाली जगह महसूस कर रहा था, मन्य मानस्य खिदम अपने आप में समझ रहा था कोई कमी रह गई, कुछ त्रुटि रह गई, कृष्णस्य कृष्ण द्वायपर्ण व्यास देव ने के पास नारदो अभ्यगाद नारद जी आ गए। कहां? आश्रम में, उनके आश्रम में। प्राग उदृतः, जैसे पहले कहा गया है, पहले कहा गया इस अध्याय का नाम है नारद जी व्यासदेव को उपदेश देने के लिए आए। अब यहां सिद्धांत क्या स्थापित होता है? सिद्धांत यह स्थापित होता है कि जब तक हम अपने अंदर कुछ कमी नहीं महसूस करेंगे तब तक कोई सिखाने वाला नहीं आएगा। जब तक हम समझेंगे हम परिपूर्ण है तब तक कोई हमारे को मार्गदर्शन करने वाला आएगा नहीं। अब व्यासदेव में वैसे कोई कमी नहीं है, आगे आएगा, तात्पर्यों में आएगा, व्यासदेव में कोई कमी नहीं थी। लेकिन ये शिक्षा के लिए, पहली शिक्षा ये है कि कोई चीज परंपरा से आनी चाहिए। तो अब भागवत को नारद के द्वारा परंपरा से आना था, तो परंपरा को स्थापित करने के लिए नारद ने ऐसे, भगवान ने योग माया से ऐसे लीला की कि नारद ने अपने अंदर कोई कमी का अनुभव किया, जबकि नारद परिपूर्ण है और सारी व्यास परिपूर्ण है, फिर भी परंपरा की रक्षा करने के लिए कि आगे भागवत की परंपरा नारायण ब्रह्मा नारद के बाद व्यासदेव परंपरा से आना चाहिए। तो परंपरा की रक्षा के लिए नारद के हृदय में ये, नारद सब जानता है लेकिन फिर भी ऐसे इस स्थिति में विमोहित हुआ है, कहा जाए तो नारद अपनी लेखनी से संतुष्ट नहीं है। और उस वक्त नारद वहां प्रकट हुए। श्री प्रभुपाद ने भागवत धर्म की परिभाषा लिखी है और ये भागवत धर्म श्रीमद् भागवत में है और यह ऐसा लिखा है। देखिए प्रभुपाद के तात्पर्य में लिखा है, द इंस्पिरेशन वॉज इन्फ्यूज्ड बाय लॉर्ड कृष्ण डायरेक्टली इन द हार्ट ऑफ वासुदेव एंड दस ही फेल्ट वैक्यूम एज एक्सप्लेन्ड अबो। ये लाइन को अंडरलाइन करना चाहिए प्रभुपाद के तात्पर्य। व्यास के हृदय में ये अपूर्णता भगवान ने प्रकट की, जैसे अर्जुन के हृदय में भगवान ने मोह को स्थापित करके गीता को देना चाहा, आज भगवान को भागवत को प्रकट करना है, इसलिए ये स्थिति व्यासदेव की हुई। कभी नहीं समझना चाहिए कि व्यासदेव अपूर्ण है, नहीं, भगवान ने ऐसी स्थिति व्यासदेव के हृदय में पैदा की ताकि व्यासदेव को नारद भागवत का उपदेश दे सके। हरे कृष्ण। अब एक लास्ट श्लोक मेरे ख्याल में है इस अध्याय का, उसमें नारद का पूजा करते हैं। अब नारद आया तो व्यासदेव ने क्या किया? तम अभ्यज्ञाय सहसा प्रत्युत्थ्यागतम मुनिः पूजयामास विधिवान् नारदम सुर पूजिता तद अभिज्ञ सहसा प्रतितः। एकदम उनको देखकर नारद जी को व्यासदेव उठ के खड़े हो गए और पूज्याम आशय उनकी पूजा की, कैसे? विधिवान, जैसे ब्रह्मा जी की पूजा, विधि कहते हैं ब्रह्मा को, जैसे ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। और ये नारद वैसे देवताओं से पूजित होता है, ऐसे विधिवत, विधिवत जब शब्द हम कहते हैं ना उसका अर्थ होता है जैसे ब्रह्मा की पूजा की जाती है, क्योंकि वेदों का आचार्य ब्रह्मा है और ब्रह्मा का प्रतिनिधि नारद है, तो नारद की पूजा भी ब्रह्मा के समान की विधिवत विधिवत विधिवान विधिवान या विधिवत मतलब ब्रह्मा, प्रभुपाद का तात्पर्य ब्रह्मा के समान, विधि का अर्थ है ब्रह्मा और ब्रह्मा के समान पूजा की। तो पूजा क्या की होगी, आए को पहले पांव धुलाता है, जब बाहर से कोई आता है पांव धुलाता है उसको बोलते हैं पाद्य, फिर हाथ धुलाते हैं अर्घ्य, फिर आचमन्य, फिर मुंह धुलाते हैं कुल्ला कराते हैं, ये तीन शब्द हैं, फिर आसन देते हैं और आसन के बिठाने के बाद उनको मधु प्रकर कोई मीठी चीज देते हैं, फिर निवेद्य देते हैं, फूलों का हार पहनाते हैं, ये सब पूजा जो है ये फिर इसको पूजा कहते हैं। ये कल आएगा कैसे आसन पे बिठाया, कैसे पूजा की और फिर क्या नारद जी ने बोला, तो ये कथा कल पांचवा अध्याय शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? ओ भागवतम लेके आनी है, सतोगुण आना चाहिए आज। हरे कृष्ण।